मोनालिसा की इस बात पर आस्था ने एक नज़र अरमान की ओर परेशान होकर देखा, फिर चिंतित होकर मोनालिसा की तरफ देखते हुए बोली, देखिए आप जल्द से जल्द धूलेपति को ठीक कर दीजिए। अब आगे वही अरमान जो कि आस्था के मुंह से निकले हुए शब्द अच्छी तरह से सुन चुका था, वो आस्था की आवाज़ को अच्छी तरह से पहचान चुका था। उसके माथे पर सिलवटें उभर आई थीं। आस्था के शब्द ऐसे थे मानो जैसे अरमान के ऊपर बम फट गया हो। अरमान की हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी। फिलहाल उसने अपने इमोशंस को सख्ती से कंट्रोल किया और कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बस केवल सावधानी से चुपचाप लेटा रहा और उन सबकी बातें सुनता रहा। तभी मोनालिसा सीरियस अंदाज में आस्था को अपने झांसे में लेते हुए बोली, देखिए मैडम, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा, उसके बाद हम आपको सारी बातें बताने के लिए नीचे ही आ जाएंगे, तब तक आप भी सबके साथ बैठे रहिए, ठीक है। ये बोलकर उसने आस्था को कन्विंस करने की कोशिश की और उसे बहला फुसलाकर जल्दी ही उसे नीचे जाने के लिए मना लिया। वहीं आस्था एक नज़र अरमान को देखते हुए बेमन से वहां से नीचे चली गई थी। वहीं अरमान के कानों में अभी भी आस्था की आवाज़ ही गूंज रही थी कि आप जल्द से जल्द मेरे पति को ठीक कर दीजिए। कहीं न कहीं अरमान के चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा सच धीरे धीरे उसके सामने आने वाला है। अरमान के दिमाग में यही बात चल रही थी, चाहे ये एक अंधविश्वास ही सही, लेकिन अब इसी अंधविश्वास जरिए मैं एक एक राज से पर्दा उठाऊंगा। अरमान सिंघानिया कोई आम इंसान नहीं था, वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना अच्छी तरह से जानता था। उसे ध्रुव की बात भी अच्छी तरह से याद थी कि अगर उसने ज्यादा सोचने समझने की कोशिश की तो उसके दिमाग में काफी ज्यादा असर हो सकता है, इतना ही नहीं उसका ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। फिलहाल अरमान जल्दबाजी में कोई रिएक्शन नहीं देने वाला था। वो बड़े ही सावधानी से अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें पता लगाना चाहता था, इसीलिए उसने आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक जारी रखा। आस्था के वहां से जाने के बाद अगले ही पल मोनालिसा उठी और एक बार फिर अरमान की ओर सतर्कता से देखते हुए अपने चेलों से बोली, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, वैसे भी इसका इंजेक्शन का असर खत्म होने वाला है। इससे पहले कि ये शेर उठे, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हो सकता है कि ये हमारे लिए नई कोई मुसीबतें खड़ी कर दें। एक काम करो, तुम लोग आगे जाओ और ऊपर के फ्लोर पर जितने भी लोगों के कमरे हैं वहां जाकर जो जो कीमती सामान दिखे उसे चुरा कर लेकर आओ। और याद रखना, कोई भी बड़ा सामान नहीं उठाना है, केवल कीमती सामान ही उठाना है। जो भी हाथ लगे फटाफट उठा कर ले आओ। और हाँ, एक काम और करना, ये जो कठमंडल है इसमें थोड़ा सा सफ़ेद पाउडर है, इसमें से थोड़ा सा धुआं निकाल दो। धुआं निकालने के बहाने तुम लोग उनके कमरों में जा सकोगे, ताकि हम उन बेवकूफ़ों से कह सकें कि हम हर कमरे के अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं उसके चेलों की मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हो गई। साथ ही अब उन्हें केवल ये सारा काम खत्म करने के बाद यहाँ से निकलने की आखिरी प्रक्रिया शुरू करनी है। मोनालिसा ने जल्दी ही अपने चेलों को अपना प्लान समझा दिया था। कुछ देर में उसके चेले चपाते पूरे के पूरे सिंघानिया मेंशन के कमरे में बेफिक्र होकर जाने लगते हैं और उनके हाथों में धुआं निकलता देखकर सब लोगों को लगने लगा कि पूरे के पूरे घर की वो सारी नेगेटिविटी ऊर्जा बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं नानी माँ तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी, वो बस अब मोनालिसा के नीचे आने का इंतजार करने लगती हैं। जल्द ही अब वो सभी के सभी एक साथ और लास्ट में थोड़ा सा धुआं निकालकर पूरे घर में कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल्द ही अरमान के कमरे से बाहर निकल गए थे। वहीं नानी माँ, जो कि सब पूरी तरह से श्रद्धा में डूब चुकी थीं, वो मोनालिसा के आते ही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और उससे बोली, देवी जी अब तो बता दो हमारे दामाद जी कैसे हैं, क्या उनके अंदर के पिशाच को आपने बोतल में कैद कर लिया। उनके इस सवाल पर अगले ही पल मोनालिसा अपने मंत्रों का उच्चारण ऊंची आवाज में करने लगी। अब मोनालिसा को मंत्रों का उच्चारण करते हुए देखकर नानी माँ एकदम चुप हो गई और बाकी सब भी ऐसे हो गए मानो जैसे कि सबको सांप सूंघ गया हो। वहीं आहन नानी माँ को इस तरह चुप देखकर ध्रुव के कानों में कानाफूसी करते हुए बोलता है, यार देखा तूने, ये लेडी तांत्रिक कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो हमारी नानी माँ को ही चुप करा दिया, मानना पड़ेगा कुछ तो बात है इसमें। मुझे लगता है कि आज तो अरमान भाई के शरीर से सारे भूत ही खत्म हो जाएंगे और हमारे प्यारे अरमान भाई हमें एक बार फिर से वापस मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं सभी की आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि शायद अरमान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक थोड़ी देर बाद मोनालिसा ने ज्यादा देर ना करते हुए अपना आखिरी मंत्रों का उच्चारण किया और उसके बाद नानी माँ की तरफ देखकर सीरियस एक्सप्रेशन से बोली, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये जो आप हमारे पास थैले देख रहे हैं इनमें हमने अरमान सिंघानिया के अंदर जो भी पिशाच की आत्मा है उसको कैद कर लिया है और अब जब अरमान सिंघानिया उठेंगे तो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मोनालिसा की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं आस्था और बाकी सबने राहत की सांस ली। उनकी दिल की धड़कन अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि अरमान ने जिस तरह की हरकत की थी ये अभी तक उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था, इसीलिए नानी माँ को जल्द से जल्द अरमान को ठीक करना था। फिलहाल अब जल्द ही मोनालिसा ने अपने चेले चपातों को देखकर कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहती कि अब हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, फटाफट से हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, कहीं हम लोगों का भांडा न फूट जाए। फिलहाल जैसे तैसे अरमान का फोन, लैपटॉप, कैश और इतना ही नहीं बाकियों के भी कमरे से उन्हें जो जो सामान मिला था वो सब कुछ उन्होंने अपने साथ लाए हुए थैले में समेट लिया था। और जिस थैले में वो अरमान के अंदर मौजूद पिशाच को बंद करने का नाटक कर रहे थे, उसी थैले का इस्तेमाल उन्होंने चोरी के सामान रखने के लिए किया था। फिलहाल अब सारी सिचुएशन समझने के बाद मोनालिसा अचानक बोल पड़ी, देखिए अब हमारे जाने का समय आ गया, क्योंकि अब हम पिशाच के साथ ज्यादा देर इस घर में नहीं रुक सकते हैं, वरना ये पिशाच एक बार फिर अपने उस शरीर को ढूंढने का प्रयास करने लगेगा जिस शरीर में उसका पहले निवास था, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी आहन मोनालिसा के इस बात का जवाब देते हुए तुरंत बोला, ठीक है आप चले जाइए और आपकी जो भी पेमेंट है वो मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। आहन की इस बात पर मोनालिसा तिरछी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे नहीं नहीं पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा भाई एक बार ठीक हो जाए वही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। मोनालिसा की इस वाली बात ने तो सभी लोगों का दिल जीत लिया था कि चलो हो सकता है कि ये कोई अच्छी तांत्रिक हो, क्योंकि इस तरह से कोई तांत्रिक पेमेंट वगैरह लेता है तो उस शख्स को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अब मोनालिसा की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं सभी के होठों पर सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कुराहट थी। फिलहाल अब मोनालिसा ने अपने चेलों को इशारे किए, जल्दी ही वे लोग धुआं वगैरह उड़ाते हुए वहां से बाहर निकलने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, तभी एक रौबदार आवाज वहां सुनाई दी, रुको। अब ये आवाज सुनकर सब लोग उस आवाज की दिशा में मुड़कर देखने लगे। वहां और कोई नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया खड़ा था। अरमान को वहां देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, उनकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं मोनालिसा ने अभी तक पलटकर अरमान को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही अरमान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वैसे ही अचानक उसे अपने आसपास ठंड का एहसास हुआ। मोनालिसा को ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उसके सर पर बम फोड़ दिया हो। फिलहाल अरमान को वहां देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था।
लेकिन रौनक बिना डरे तुरंत अरमान के पास गई और उसने हिचकिचाते हुए अरमान से पूछा, भाई आप ठीक हैं तो ना? सभी को ये लग रहा था कि शायद अरमान के अंदर का पिशाच चला गया होगा, तो हो सकता है कि अब अरमान नॉर्मली बर्ताव करे। लेकिन अरमान इमोशनलेस फेस के साथ खड़ा रहा। तभी आहन तुरंत ध्रुव के कान में एक बार फिर फुसफुसाते हुए शुरू हो गया। अरमान भाई के एक्सप्रेशन देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि अभी भी उनके अंदर कितने सारे पिशाच मौजूद हैं। देख वो किस तरह जानलेवा नजरों से उस मोनालिसा को देख रहा है। उसकी इस बात पर ध्रुव ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चुप हो जा गधे, फिलहाल मुझे सोचने दे और समझने दे कि आखिरकार अरमान भाई इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उसकी आवाज में टेंशन को भांपते हुए आहान शांत होकर अरमान को एकदम से देखने लगा। नानी माँ भी अब खुद को रोक नहीं पाई और अरमान के सामने जाकर उसका हालचाल पूछने लगे, अरे बिटवा अब आप ठीक है ना? जानबूझकर नानी माँ ने अभी अरमान को दामाद जी नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें अभी लगता था कि अरमान की यादें नहीं हैं। पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक उम्मीद थी कि शायद अरमान नानी माँ को पहचान ले और कहे, हाँ नानी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नानी माँ की नज़र में उस समय बेचैनी, डर और उम्मीद सब कुछ छिपा हुआ था। लेकिन उनकी इस बात पर अरमान की नज़रों में एक पल के लिए ठंडापन आ गया। उसने रूखेपन से नानी माँ को जवाब दिया, ओल्ड लेडी मैं ठीक हूँ या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप चुपचाप खड़े रहिए। अरमान की इतनी बदतमीजी भरी बात सुनकर नानी माँ तुरंत चौंक गईं। उनका दिल निराशा से भर गया और वो तुरंत पीछे हटकर खड़ी हो गईं। फिलहाल आस्था भी धीरे धीरे खुद के इमोशंस शांत करने लगी, क्योंकि अरमान को देखकर अब ये स्पष्ट हो गया था कि अरमान की यादें अभी तक वापस नहीं आई हैं और उसके अंदर भूत प्रेत है या नहीं इसका कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन तभी मोनालिसा, जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी, उसने हकलाई हुई आवाज में कहा, देखिए अब हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, ये अशुभ होता है और पिशाच आज़ाद भी हो सकता है, इसलिए हमें चलना चाहिए। ये कहकर मोनालिसा ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन तभी अरमान सिंघानिया की कड़क आवाज़ एक बार फिर वहां गूंजी, रुको। ये आवाज़ सुनते ही कई गार्ड्स आगे बढ़े और तुरंत ही मोनालिसा को चारों तरफ से घेरने लगे। अब ये देखकर मोनालिसा के माथे पर ठंडा पसीना टप टप बहने लगा। वो तुरंत ही कांपने लगी और अरमान को घबराकर देखने लगी। वहीं अरमान तेज कदमों से वहां आया और सीधा मोनालिसा के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपनी बंदूक निकालकर उसके माथे के बीचों बीच लगा दी। ये देखकर मोनालिसा के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा, उसके हाथ पांव सुन पड़ गए। वहां का माहौल पूरी तरह जम गया। बाकी सब लोग पूरी तरह हैरान और परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें अरमान का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था। कहीं न कहीं उनकी आंखों में अरमान को लेकर निराशा के भाव भी थे, कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। आकाश, जो काफी देर से ये सिचुएशन अपनी शांत नजरों से देख रहा था, वो एकदम से अरमान को रोकते हुए बोला, अरमान तुम इस तरह किसी की जान नहीं ले सकते, ये बेगुनाह है। फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोलता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस तरह की बातों पर यकीन नहीं होता, पर यह सिर्फ एक छोटी सी पूजा थी जो हम लोगों ने अपने वहम को दूर करने के लिए करवाई थी।
ये कहते हुए आकाश की आवाज धीमी पड़ गई और वो अरमान की ओर देखने लगा। लेकिन जैसे ही अरमान ने नजरें उठाकर आकाश को घूर कर देखा तो वैसे ही आकाश कुछ कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया, क्योंकि अरमान की नजरों का तिखापन इतना जबरदस्त था कि आकाश ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। आस्था, जो दिल थामकर अरमान को टकटकी लगाई देख रही थी, उसके लिए अब चुप रहना मुश्किल हो गया था। वो अब खुद को रोक नहीं पाई और अरमान के पास आकर नाराजगी से बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप इस तरह उनकी जान नहीं ले सकते। लेकिन तब तक मोनालिसा, जो डर के मारे घबरा रही थी, वो ज्यादा देर तक अरमान के जानलेवा एक्सप्रेशंस को सहन नहीं कर पाई और देर ना करते हुए वो अरमान से विनती करने लगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका सामान लूटना नहीं चाहती थी, मैं अभी आपका सारा सामान वापस कर देती हूँ, पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। ये बोलते हुए घबराहट में उसने थैले में से फोन, लैपटॉप, ज्वेलरी और बाकी सभी सामान तुरंत ही निकालकर अरमान के सामने रख दिए। अब ये नजारा देखते ही सब लोगों ने आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। अब जाकर सबको समझ में आया कि अरमान ने मोनालिसा के सर पर बंदूक क्यों तान रखी थी। वही नानी माँ, जो कि मोनालिसा पर कुछ ज्यादा भरोसा कर बैठी थी, वो पूरी तरह से बौखला उठी और मोनालिसा के पास आकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए बोली, अरे तू हमारे दामाद जी के अंदर का पिशाच निकालने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब हमें लगता है कि तुझसे बड़ी पिशाच इस पूरी दुनिया में कहीं कोई हो ही नहीं सकती है। तू पैसों के लिए इतना गिर गई कि तूने इतनी बड़ी घटिया हरकत कर दी, तू ऐसा कैसे कर सकती है? ये बोलकर अब नानी माँ ने जितना हो सकता था उतनी बुरी तरीके से मोनालिसा के बालों को नोचना शुरू कर दिया था। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी सिर्फ मेनिया पार।